पृष्ठ संख्या 133। गीता अंबेडकर की दृष्टि में उन्होंने विभिन्न विद्वानों के विचारों की समीक्षा की। एक महापंडित के अनुसार मोक्ष के तीन रास्तों की ओर गीता का संदेश है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। गीता के एक अध्याय से 6 अध्याय तक में कर्म मार्ग का उपदेश है, जबकि 7 से 12 अध्याय तक में ज्ञान मार्ग और अंत में 18वें अध्याय तक भक्ति मार्ग है। अंबेडकर के अनुसार परंपरागत विचारकों तिलक और शंकराचार्य में शंकराचार्य ने कहा, गीता केवल ज्ञान मार्ग का संदेश देती है, जबकि तिलक ने इसे कर्म मार्ग का श्रेष्ठ संदेश वाहक कहा। अंबेडकर ने उक्त सभी विद्वानों की राय को अस्वीकार करते हुए कहा, यह न तो कर्म की पुस्तक है और न ही दर्शन की कोई पुस्तक है। यह धर्म के कुछ सिद्धांतों का दार्शनिक आधार पर बचाव करने का एक प्रयास है। इसमें युद्ध को न्यायोचित कहा गया है, जब अर्जुन युद्ध के द्वारा संहार करने के विरुद्ध हथियार डाल देते हैं, तो कृष्ण युद्ध और युद्ध में संहार की महिमा को दार्शनिक आधारों पर समझाते हैं। किसी तरह मनुष्य नश्वर और आत्मा अमर है, या तो उसे स्वाभाविक मृत्यु मिले अथवा वह हिंसा द्वारा मृत्यु का वरण करे। जीवन तो अवास्तविक है, इसीलिए इसके लिए आंसू बहाना व्यर्थ है। आत्मा और शरीर को एक ही मानना भूल है। अनश्वर आत्मा को कोई समाप्त नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी समाप्ति हेतु दुख अथवा पश्चाताप व्यर्थ है। भगवत गीता में चातुर्य वर्ण को दार्शनिक वरदान दिया गया है। गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक का उदाहरण देकर वे कहते हैं कि जन्मना चातुर्य वर्ण की स्थापना की गई है और युक्ति के रूप में यज्ञों के विधान को भी स्थापित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गीता में बुद्धि योग कर्म योग की आवश्यक शर्त है और इसी से स्थिति प्रज्ञ की दशा प्राप्त करने का साधन बताया गया है। वे कर्म कांड को बलवान बनाने के विचार के भी खिलाफ हैं। फल की इच्छा के बिना कर्म करने के सिद्धांत अर्थात अनासक्त योग की भी निंदा की। उसके अनुसार बहुतेरे विद्वान कर्म योग को क्रिया तथा ज्ञान योग को विद्वता से जोड़ते हैं, जो उनके अनुसार गलत हैं। वे मानते हैं कि जैमिनि के कर्म कांड को ही गीता ने कर्म योग कहकर और बादरायण के ब्रह्म सूत्र में वर्णित यज्ञादि को ज्ञान योग बनाकर समस्त कर्म कांडों को दार्शनिक शब्दों से मजबूती प्रदान की गई है। उन्होंने तिलक की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने होशियारी से जनता में इस विश्वास पर बल दिया कि गीता अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। अंबेडकर के अनुसार बुद्ध धर्म का भारत वर्ष में इतना विस्तार हो चुका था कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी वर्गों ने इसे अपना धर्म स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म यज्ञादि के विरुद्ध जनता को जागृत कर चुका था, अहिंसा को परम धर्म के रूप में मान्यता दे चुका था, समाज में स्त्रियों का महत्व बढ़ गया था। अंततः कर्म कांड समाप्त हो रहे थे और चातुर्वर्ण के सभी बंधन कमजोर पड़ गए थे। एक, डॉक्टर अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज, कॉमा, वॉल्यूम 3, पृष्ठ संख्या 36। पृष्ठ संख्या 134। ऐसे समय में गीता प्रतिक्रांति के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत की गई। यह एक प्रकार से ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। चातुर्वर्ण्य को सांख्य से मिलाकर इसे मान्यता दी गई, यह कैसे संभव है? सांख्यों की गिनती केवल 3 में है, जबकि वर्ण 4 है। यह इतिहास की सच्चाई है कि अगर ठीक समय पर गीता का प्रवेश न होता, तो इस देश की प्रतिक्रांति दब गई होती और ब्राह्मण धर्म का विनाश हो गया होता। वेदों और यज्ञों की महत्ता समाप्त हो गई होती। गीता भी जैमिनी के पूर्व मीमांसा की तरह प्रतिक्रांति की सुरक्षा में आई एक पुस्तक है। यह कर्मकांड के सिद्धांतों के खिलाफ लोगों को भड़काने अथवा विरोध करने के लिए उत्तेजित होने से रोकने का ग्रंथ है। इसमें सभी को अपने वर्णों की सीमा में रहते हुए अपने कार्य करने की बात कही गई है। पूर्व मीमांसा में शुद्ध और सामान्य कर्म की बात कही गई है, जबकि गीता के अध्याय 3 में 9 से 18 श्लोकों में अनासक्त कर्म की बात कही गई है। उनके अनुसार गीता में ब्रह्म निर्वाण की बात बौद्ध धर्म के निर्वाण के सिद्धांत से ली गई है। गीता में सच्चे भक्त की परिभाषा में कहा गया, जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भाव को सामान्य रूप में ग्रहण करता है, वह भक्त है। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों से उद्धरण देकर इसे सिद्ध करने की कोशिश की है। गीता और कृष्ण के उपदेश के यह अंश बौद्ध धर्म दर्शन से लिए गए हैं। उनका कहना है कि बुद्ध धर्म के बहुतेरे विचार गीता में भी हैं, और उनके इस कथन को बाल गंगाधर तिलक भी स्वीकार करते हैं। लेकिन तिलक के अनुसार गीता महाभारत का ही एक अंग है, और इन दोनों ग्रंथों को महाकवि व्यास ने लिपिबद्ध किया। इसीलिए तिलक शक काल से 300 वर्ष पूर्व इस पुस्तक का समय आंकते हैं, अर्थात 422 ईसा पूर्व के आसपास। इसमें गीता कुछ पहले की रचना है, यद्यपि यह महाभारत की कथा का ही एक अंश है, लेकिन तिलक के अनुसार यह महाभारत से पूर्व ही लिपिबद्ध कर दिया गया था। तिलक सहित सभी विद्वानों के विचारों का खंडन करते हुए गीता की तिथि के बारे में उनका विचार है कि यह ईसा के पूर्व का ग्रंथ है, और ब्राह्मणवाद ने अपने गिरते खंडहरों की हिफाजत के लिए एक दार्शनिक ग्रंथ प्रस्तुत कर दिया, जो बुद्ध धर्म के जवाब में था और भारत में धार्मिक प्रतिक्रांति को मजबूत करने के। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर एक तत्वदर्शी विचारक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उन्होंने समस्त भारतीय धर्मशास्त्रों को और उन शास्त्रों के बारे में विद्वानों की टीका का सांगोपांग अध्ययन किया था। वे वेदों की प्रामाणिकता, वेदांगों के विचारों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों आदि सभी के संबंध में अपनी राय रखते हैं। उनके रामायण महाभारत के संबंध में विचारों से बहुतों को न केवल विरोध हो सकता है, अपितु गुस्सा भी स्वाभाविक ढंग से आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वे अपने विद्यार्थी जीवन में ही यह समझ चुके थे कि जाति-पाति वर्ण व्यवस्था की देन है, और इस व्यवस्था के पोषक हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने संपूर्ण बौद्ध वांग्मय सहित समस्त भारतीय दर्शन का गंभीर अध्ययन किया तथा इस बात पर आश्वस्त हो गए। हिंदू धर्म मूलतः ब्राह्मण धर्म है, इसमें अन्य वर्गों को वह स्थान नहीं जो होना चाहिए। साथ ही बौद्ध धर्म में सभी वर्गों को आत्मसात करने की ज्यादा सामर्थ्य है, और यही धर्म भारत की परिस्थितियों के अनुकूल है। एक डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज कॉमा वॉल्यूम 3 कॉमा पृष्ठ संख्या 376।